أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد پیارے دوستو اور میرے درشکو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام پر آدھارت مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے اس کاریکرم میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام کو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں طہارت کے بھاگ میں سے غسل جنابت کے بارے میں بات چیت کی۔ ہم نے اس پروگرام میں کوئی انسان مجنب کیسے ہوتا ہے یہ بتایا، اگر انسان مجنب ہو گیا ہے تو اس سے اوپر کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے یہ بتائی، اور وہ غسل کیسے کرے گا اور غسل کی کیا شرطیں ہیں، آدھی آدھی۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو میں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتائیں اور اس کے بارے میں وسترت روپ سے بات چیت کی۔ اب ہم اپنے اس پروگرام میں اسی غسل سے سمبندھت بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ کچھ غسل وہ ہوتے ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہوا کرتے ہیں، جن میں سے ایک غسل جنابت تھا، اور اس کے بعد جو غسل آتا ہے جس کے بارے میں ہم کو آج بات چیت کرنا ہے وہ غسل مس میت ہے۔ یہ بھی ایک وہ غسل ہے جو مہیلاؤں اور پروشوں، عورتوں اور مردوں دونوں پر برابر سے واجب ہوا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان اس کی شرطوں کو پورا کر دے، اس کے انوسار کاریوں کو کر لے، تو چاہے وہ مہیلا ہو چاہے وہ پروش ہو، اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی اگر کسی مرتک کو، کسی میت کو، کسی مردے کو کسی مہیلا یا پروش نے چھو لیا ہے تو اس کے اوپر ایک غسل واجب ہوتا ہے جس کو غسل مس میت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی کسی میت کو چھوا غسل واجب ہو گیا، جس پرکار سے چھوا غسل واجب ہو گیا، نہیں، اس کے لیے شریعت نے کچھ احکام، کچھ قاعدے، کچھ قانون، کچھ نیم اور کچھ سدھانت بیان کیے ہیں، اور کہا یہ کہ اگر ان کے انوسار کسی میت کو چھوا جائے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ انہی نیموں میں سے سب سے پہلا نیم یہ ہے کہ جب انسان کسی میت کو، کسی مردے کو چھو رہا ہے تو اس مردے کا شریر ٹھنڈا ہو چکا ہو، کیونکہ ایک سمے سیما ہوتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کے پران پکھیڑو اڑ جاتے ہیں تو کچھ سمے تک اس کا شریر گرم رہتا ہے۔ جب تک اس مردے کا شریر گرم ہے، اگر کوئی انسان اس مردے کو، شریر کو چھو لیتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ غسل مس میت واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس مردے کا شریر ٹھنڈا ہو چکا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مردے کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو تین پرکار کے غسل دیے جاتے ہیں، جس کو ہم وسترت روپ سے غسل میت کے بھاگ میں بیان کریں گے۔ اگر کسی مردے کو تینوں غسل دیے جا چکے ہوں تو بھلے ہی اس کا شریر ٹھنڈا ہو چکا ہو، اگر ایک مکلف انسان، ایک مسلمان اس کے شریر کو چھو لیتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، بلکہ غسل مس میت صرف اس صورت میں واجب ہو سکتا ہے کہ شریر ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ اسی میں کچھ ایسے مردے بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسے مرتک بھی ہوا کرتے ہیں کہ جن کا شریر بھلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہو، غسل بھی نہ دیا گیا ہو، پھر بھی ان کے شریر کو اگر چھو لیا جائے तो उनके शरीर को छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। अब शायद हमारा कोई भाई ये प्रश्न करे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो आपने पिछले मसले में ये बताया कि हर वो मुर्दा जिसका शरीर ठंडा हो चुका हो, जिसको तीनों गुस्ल ना दिए गए हों, छूने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ मुर्दे ऐसे भी होते हैं जिनको छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, गुस्ल मस मैत वाजिब नहीं होता है। जी हाँ, इस्लाम ने कहा है कि अगर कोई इंसान मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाए तो उसके शरीर को छूने से गुस्ल मस मैत वाजिब नहीं होता है। लेकिन इसीलिए शर्त यह है कि इंसान जिस समय लड़ रहा है उस समय शहीद हुआ हो, अपने रणभूमि के अंदर वो शहीद हुआ हो, ये ना हो कि वहाँ घायल हो गया आके अस्पताल में वो शहीद हुआ हो। ना, अगर अस्पताल में शहीद हुआ तो उसका दर्जा बहरहाल बुलंद है, लेकिन उसके छूने से गुस्ल मसे मैयत वाजिब होगा। अगर कोई सिपाही रणभूमि के अंदर इस्लाम की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो जाए तो उसका मर्तबा ये है कि इस्लाम ने कहा है कि अब अगर ये शहीद हो गया है तो उसके शरीर को ठंडा होने के बाद भी छूने पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई मुर्दा ऐसा हो कि उसको आम मुर्दा था, शहीद नहीं था, लेकिन अगर उसको तीनों गुस्ल दिए जा चुके हों तो उसको छूने के बाद गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं होता है। जब तक तीनों गुस्ल नहीं दिए गए हैं तब तक छुएगा तो गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, लेकिन तीनों गुस्ल देने के बाद अगर छुआ जा रहा है तो गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी कारणवश या अनजाने में या गलती से किसी मुर्दे को बार बार छूता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग मुर्दों को छूता है। ये मसला उन लोगों के लिए ज़्यादा पेश आता है जो मेडिकल लाइन में है। अगर कोई इंसान किसी ऐसे विभाग में जहाँ वो पोस्टमार्टम वगैरह करता है मुर्दों का, या डॉक्टर है कि जिसको बाज़ वक़्त उनका चेकअप करना होता है, तो अगर कोई इंसान किसी मुर्दे को बार बार छू रहा है या अलग अलग मुर्दों को छू रहा है तो उसके ऊपर कितने गुस्ल वाजिब होंगे, ये एक प्रश्न है। कि मसलन अगर किसी इंसान ने चार मुर्दों को छू लिया है तो क्या उसको उसके ऊपर चार गुस्ल वाजिब होंगे, या किसी मुर्दे को चार बार छू लिया है तो क्या उसके ऊपर चार गुस्ल वाजिब होंगे? कहा आ जाता है नहीं, अगर इंसान कितनी बार भी छुए, कितने मुर्दों को भी छुए, उसके ऊपर गुस्ल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाजिब होता है। एक ही गुस्ल करेगा, गुस्ल मस मैयत की नियत से एक गुस्ल कर ले, सारे गुस्लों का जिम्मा अदा हो जाएगा। और दूसरा जो मसला यहाँ पर आता है, जैसा कि हमने गुस्ल जनाबत के बारे में बताया था कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ कार्य हराम हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वो नहीं जा सकता है, लेकिन गुस्ल मस मैयत में ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान के ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब होता है तो वो मस्जिद में भी जा सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, मस्जिद में बैठ भी सकता है, कुछ उठा और रख भी सकता है। मसे मैयत करने वाले के लिए ऐसा कुछ वाजिब नहीं है, यानी ऐसा कुछ हराम नहीं है। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक सूरत ऐसी है जब उसको गुस्ल करना होगा, और वो सूरत ये है कि जब वो नमाज़ पढ़ना चाहे। अगर वो किसी नमाज को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए तब वाजिब ये है कि गुस्ल मसे मैयत करे, बिना गुस्ल मसे मैयत किए वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। ये वो चीज़ थी जो हमने आपको गुस्ल मस मैयत के बारे में बताई। गुस्ल मस मैयत से संबंधित कुछ मसले और हैं जिनको हम यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद हम खुद गुस्ल मैयत के भाग को छोड़ते हुए डायरेक्ट तयम्मुम के भाग में आएंगे, क्योंकि गुस्ल मैयत के बारे में विस्तृत रूप से बयान किया जाना आवश्यक है, जिनको हम अपने अगले किसी भाग में आपके सामने पेश करेंगे। अगर कोई इंसान, कभी कभी ये होता है कि अगर कोई इंसान अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने, ये महिलाओं के लिए शायद पेश आ जाए ऐसा कि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं, अगर कोई महिला अपने सर के बाल से या नाखून से मुर्दे के सर के बाल को या नाखून को छूता है तो ऐसे ऐसे समय में क्या है, क्या उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं वाजिब होगा? तो कहा यह गया है कि अगर कोई इंसान अपने सर के बाल या शरीर के बालों से या रोएं से या अपने शरीर के नाखून से मुर्दे के बाल या नाखून या शरीर के किसी भी अंग को छू रहा है तो उसके लिए एहतियात वाजिब ये है कि उसको चाहिए कि वो गुस्ल मस्से मैयत कर ले। और दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर ईश्वर न करे किसी महिला के यहाँ चार माह के बाद गर्भपात हो जाए, अगर कोई औरत के पेट में 4 महीने के बाद बच्चा गिर जाए, अब अगर वो बच्चा निकाला जा रहा है ऑपरेशन के सूरत में या अपने प्राकृतिक सूरत में निकाला जा रहा है, तो उसके लिए क्या आदेश है? तो कहा यह गया है कि अगर किसी महिला का 4 महीने का बच्चा, यानी पेट में 4 महीने हो चुके हों, उसके बाद गिर जाता है, तो उसके लिए बेहतर ये है, एहतियात मुस्तहब ये है कि वो उसके बाद गुस्ल मसह मैत को अंजाम दे। इसमें एक मसला और भी आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मरा नहीं होता है, बल्कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी ऑपरेशन के कारण या किसी और कारण से कभी कभी ऐसा होता है इंसान के शरीर का कोई अंग कट जाता है। जैसे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर किसी ऑपरेशन की वजह से, किसी ऑपरेशन के कारण से निकाल दिया गया, तो इस हाथ को छूना या उस पैर को छूने के बारे में क्या आदेश है? तो इसके बारे में एक पूर्ण आदेश ये है कि कहा यह गया कि शरीर का वो अंग जो जीवित इंसान के अंदर से निकाला जाए, अगर उस शरीर के अंग में हड्डी पाई जाती है, अगर शरीर का वो अंग हड्डी वाला है, तो इंसान के लिए वाजिब है कि वो गुस्ल मसह मैत करे। लेकिन अगर उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है, तो उसके ऊपर गुस्ल मसह मैत करना वाजिब नहीं है। इसी में एक लास्ट मसला गुस्ल मसह मैत के बारे में, जो ये है कि अब गुस्ल मसह मैत वाजिब हो गया किसी भी कारणवश, किसी मुर्दे को छूने की वजह से, किसी शरीर के कटे हुए अंग को छूने की वजह से, क्या गुस्ल पहले नहीं दिए गए तब छू लिया इसके कारण से, किसी भी कारण से एक मुकल्लफ के ऊपर गुस्ल मसह मैत वाजिब हो गया, तो अब वो क्या करे? तो इसके बारे में कहा गया, सीधी सी बात है, अगर किसी के ऊपर गुस्ल मसह मैत वाजिब हो जाता है, तो वो गुस्ल मसह मैत करे। अब शायद कोई ये पूछे कि गुस्ल मसह मैत कैसे किया जाता है, तो एक बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ गुस्ल मसह मैत नहीं, बल्कि हर वो गुस्ल जो इस्लामी शरीयत में चाहे वो वाजिब हो चाहे वो मुस्तहब हो, किसी भी प्रकार का गुस्ल हो, इस्लामी शरीयत ने गुस्ल करने के दो तरीक़े बताए हैं, या गुस्ल इर्तमासी होगा या गुस्ल तरतीबी होगा। गुस्ल इर्तमासी हो तो सीधे नियत करने के बाद डुबकी लगा ले पानी के अंदर, या पानी में जाने के बाद नियत कर ले, या पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए तब नियत कर ले, तो जो भी गुस्ल है उसके अनुसार नियत कर ले, उसका गुस्ल पूरा हो जाएगा। गुस्ल तरतीबी में भी जैसा कि हमने बताया था गुस्ल जनाबत के बारे में, जिस प्रकार इंसान गुस्ल जनाबत करता है, जो तरीक़ा गुस्ल जनाबत की तरतीब में हमने बताया था कि हमने जब ये बताया था गुस्ल जनाबत अगर तरतीबी कर रहा है तो कैसे करेगा, जो तरीक़ा गुस्ल जनाबत तरतीबी के बारे में है, वही तरीक़ा हर वो गुस्ल जो तरतीबी एक मुकल्लफ करना चाहता है, चाहे वो वाजिब गुस्ल हो या मुस्तहब गुस्ल हो, वो उसी प्रकार किया जाएगा जैसे गुस्ल जनाबत किया जाता है। इसी ऐसे ही बस अगर किसी के ऊपर गुस्ल मसह मैत वाजिब हो जाता है, तो वैसे ही अंजाम देगा जैसे गुस्ल जनाबत को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि गुस्ल जनाबत के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना इंसान के ऊपर वाजिब नहीं था, लेकिन गुस्ल मसह मैत इससे अलग है, इससे हट के, कि अगर इंसान गुस्ल मसह मैत कर रहा है तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो गुस्ल मसह मैत करने के बाद वज़ू को भी अंजाम दे। इसके बाद कुछ वो गुस्ल हैं जो मुस्तहब होते हैं किसी ख़ास स्थान के कारण, किसी ख़ास समय के कारण, किसी इस तरह के होते हैं जिनको हम बयान करेंगे, लेकिन जहाँ पर बयान कर दें थोड़े से कुछ मसाइल को, जैसे कुछ मसले गुस्ल ऐसे होते हैं जो मुस्तहब होते हैं, जैसे गुस्ल जुमा है, हमने गुस्ल मसह मैत के बारे में बहस तमाम हो गई, समाप्त हो चुकी है। अब कुछ गुस्ल ऐसे होते हैं जो मुस्तहब होते हैं, जैसे जुमे के दिन का गुस्ल है कि जिसके बारे में इस्लाम ने बहुत ताकीद की, कहा कि जुमे के दिन गुस्ल करे, या रमज़ान के कुछ ख़ास दिन होते हैं जिनमें गुस्ल वाजिब गुस्ल मुस्तहब होता है करना, या मसलन 18 ज़िलहिज है जिसके दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, या इसी प्रकार और भी तारीख़ हैं जिसमें गुस्ल करना मुस्तहब होता है, या मसलन किसी ज़्यारत पे जाना चाहता है तो गुस्ल करना मुस्तहब है, मक्का मुकर्रमा जाना चाहता है तो गुस्ल करना मुस्तहब है, इसी प्रकार और भी गुस्ल हैं जो मुस्तहब हैं, जिनको देखने लिए आपको चाहिए कि बड़ी किताबों का मुताला करें, इंशाल्लाह उनके बारे में आप जान जाएंगे। इसके बारे में और भी कुछ बहसें हैं जिनको हम यहाँ पर छोड़ के अब इसके बाद वाले अपने उस बहस में, इसके बाद वाले प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में बयान करेंगे, क्योंकि गुस्ल के अगर मुस्तहब के हम भाग में आ गए तो ये बहस बहुत तूलानी हो जाएगी और ये ना हमारे प्रोग्राम की हद के अंदर है और ना आप इसको सुन सकेंगे। तो आगे इस प्रोग्राम को छोड़ते हुए यहीं पर हम तयम्मुम की बहस में आएंगे। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम में हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।